और क्या चाहिए प्यारा बाबा मिला, और क्या चाहिए प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियां हम पे बरसा रही, प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियां कितनी हर्षा रही, तपती जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। शुभ कामनाएं हम देते चले, सबके दिल की दुआएं हम लेते चले, याद और सेवा के ही अब संकल्प हो, दिल से बाबा ही बाबा हम कहते चले, संगम युग का समय कितना अनमोल है, दादी जी संग सफल इसको कर जाइए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए,
प्यारा बाबा मिला। ओम शांति। अभी हमारे सामने एक विशिष्ट आत्मा पधारी है जो आज भी हमारा बाप दादा से संदेश के माध्यम से अप्रत्यक्ष मिलन कराते हैं। ऐसी हमारी वरिष्ठ और अनुभवी ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित थे, जिनका हम सभी एक हाथ की ताली के द्वारा दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। बचपन से आप साकार बाप दादा मम्मा और दादियों की पालना में पले हैं। यज्ञ की परदादी निर्मल शांता दादी जी जो कि लौकिक में ब्रह्मा बाबा की पुत्री थी, उन्हीं के अंग संग वर्षों तक सेवा में रहने का आपको महान सौभाग्य मिला है। वर्षों तक कलकत्ता में सेवाएं देने के बाद वर्तमान समय आप यज्ञ की गिनी चुनी संदेश पितरियों में से एक है और मधुबन में ही आप रहते हैं। इस विशेष पाठ का वरदान आपको स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मिला है। मधुबन बेहद घर में हर सतगुरुवार को आप ही बाप दादा के मधुर राजयुक्त संदेश लाते हैं। आपने अनेक देश विदेशों की यात्राएं करते हुए दिव्य ईश्वरीय संदेशों द्वारा अनेक भाई बहनों का मानसिक मिलन बाप दादा से कराया है, ऐसी विशिष्ट भूमिकाएं निभाते हुए भी आप स्वभाव से सरल और सादगी पसंद करते हो, तो अभी हम रुक्मणी दीदी जी के हमारी दादियों के अंग संग रहकर किए गए स्वर्णिम अनुभवों को उनके मुखारविंद से उनकी ही वाणी में सुनेंगे आदरणीय रुक्मणी दीदी जी।
ओम शांति। गीत बज रहा था तो गीत में तो सब कुछ देखा, सारी बातें आ गई, मधुबन भी आ गया, बाबा भी आ गया, दादियां भी आ गई, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या हम ब्राह्मणों को? कुछ नहीं चाहिए ना। बाबा मिला, ब्राह्मण परिवार मिला संगम ऊपर, और सतयुग में देवी परिवार बन जाएगा, नहीं? इसलिए बाबा ने हम बच्चों को सदैव संगम युग पर नशा और खुशी में रहने के लिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कोई ना कोई युक्ति समझाते रहते हैं, बातें बताते रहते हैं, जिससे हमारा कभी भी खुशी गायब ना हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी देन कहें खुशी है। हमारी परदादी कहती, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी, कहती थी खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा क्या नहीं होगा, रोग नहीं होगा, भय नहीं होगा, नहीं? चिंता से भय सब कुछ आता, रोग आते हैं। तो मैं अगले सप्ताह नीचे कहाँ की भट्टी थी तो क्लास कराई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी वर्तमान समय ब्राह्मण बच्चों के लिए अभी बहुत कुछ ज्ञान खजाना मिलता रहता चारों तरफ से, और यूट्यूब में जाओ तो इतने क्लास, इतने ज्ञान खजाने, जितना सुनो उतना कम है, है? आप लोग माताओं को आता है यूट्यूब चलाना? आता है माताएं? खड़ा करो तो हाथ, किसको किसको देखना आता है यूट्यूब में, इतनी माताएं। अच्छा, आप लोग में कोई ऐसी माता है जो बांधेली भी है? कोई बंधन वाली है क्या? कोई आई है? कोई नहीं, निर्बंधन है सभी, तभी पहुंच गए हैं। अब नहीं थी पर अब नहीं है, सब निर्बंधन हो गए, अच्छी बात है। तो इसलिए परिचय के साथ बाबा के साथ का और दादियों का विशेष अनुभव सुनाऊंगी। तो उस दिन क्लास पूरा हुआ, कमरे में आई तो सुलू एन जी ने हमको ऊपर से फोन किया कि तुम कभी ऊपर आओ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो सीजन अच्छा तो आऊंगी। तो अभी चार पांच दिन पहले भी आई थी कुछ काम से ऊपर, तो मेरे को पक्का किया कि शुक्रवार को तुमको आना ही है। मैंने बोला ठीक है, जब तक बरसात नहीं तो आऊंगी, बरसात होगी तो नहीं आऊंगी ऊपर में पांडव और, क्योंकि अब बरसात भी बहुत होती तो फागी भी बहुत होती है। पर वह दिन भी याद करते हैं जब हमारी दादी और बाबा मम्मा सभी इस पांडव भवन में रही हैं, नहीं? यज्ञ की शुरुआत तो ऐसे तो है, सिंध हैदराबाद से है, पर जब आबू में आए तो ब्रिज कोठी में भी रहे, तो पोखा हाउस में भी रहे, तो यहाँ आके फिर बाबा का स्थान मुकरर हो गया। तो शुरू से ही ज्ञान तो हमने कलकत्ते से 1958 से लिया, और जब साकार बाबा भी थे, मम्मा भी थी और सभी दादियां थी। तो मम्मा तो 1964 में कलकत्ते में आई थी, और उस समय साकार बाबा ने एक प्रदर्शनी लगवाई थी कलकत्ते में, क्योंकि बाबा का तो स्थान कलकत्ता था, है? धंधे का कहें बिजनेस का, तो बाबा को बहुत उमंग रहता था कि ऐसा स्थान होना चाहिए। तो प्रदर्शनी लगवाई थी बाबा ने, तो मम्मा कम से कम 20 दिन 22 दिन वहाँ रुकी थी, और धर्मशाला में 3 मंजिल 4 मंजिल की धर्मशाला थी, चौथी मंजिल पर छत में भोजन बनता था। और उस समय बाबा ने सभी को भेजा, अपने पुराने अनन्य सभी दादियाँ, जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्भय भाई, सभी भाइयों को, बड़े आनंद के सुदादा। तो उस समय जो सेवा की शुरुआत तो 1958 से हुई, पर आज से इतने साल पहले सेवा, आप समझ सकते, सबने हिस्ट्री सुनी है कि कैसे सेवा में विघ्न आते थे, बातें आती थी, परीक्षाएं आती थी, सुनी है ना सबने, देखा नहीं पर सुनी तो सबने है। अब हम उस समय ऐसे समय पर आए जब लोग ब्रह्मा कुमारियों के नाम से बहुत डरते थे। यदि किसी सफेद ड्रेस में किसी बहन को देख लिया तो लोग मुख मोड़ लेते थे, साइड होके चले जाते थे, ऐसा समय था। और ऐसे समय पर आत्माओं को निकलना एक बहुत बड़ी बात थी। पर उस प्रदर्शनी से कम मारवाड़ी इलाके में प्रदर्शनी लगी थी, उसमें से कम 40-50 भाई बहने निकले थे, माताएं जास्ती थी। अभी मैं समझ कोई एक आधी एक ही बाकी है, बाकी तो सब एडवांस में माताएं भी चले गए, भाई भी चले गए। तो वो सेवा की शुरुआत थी। और मम्मा उस समय 20-22 दिन रही, तो मम्मा उस समय हम देखते थे कि मम्मा एक छोटे से कमरे में नीचे बैठी होती थी, और कोई भी नए आते थे, कोई गेस्ट लेके, कोई बड़े वीआईपी को लेके आते, कोई भाई बहने समझाने के बाद, तो मम्मा बड़े प्यार से उनसे मिलती थी, दृष्टि देती थी और टोली खिला देती। ये तो अपने यज्ञ में रिवाज है ना, टोली का और बोली का, और कुछ चाहिए नहीं, और दृष्टि का। तो ऐसे करके शुरुआत हुई। पर लौकिक में माताजी ज्ञान में चलती थी, पिताजी एंटी थे, पूरा परिवार एंटी। पिताजी 5 भाई थे और बाबा 3 थे, तो 2 बाबा के 5-5 बेटे, 1 बाबा के 3 बेटे, ऐसे करके बड़ा परिवार था। और एक ही बिल्डिंग में हम लोग कलकत्ते में रहते थे। उस समय हम लोग पता नहीं 50-60-70 बच्चे होंगे, इतना बड़ा परिवार के बच्चे भी इतने थे, किसके 2, किसके 4, किसके लास्ट में तो 1 दर्जन भी थे, 6 बहनें 6 भाई। तो आप समझ सकते इतना बड़ा परिवार में रहते हुए और फिर ज्ञान में चलना, निकलना, ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात थी। पर हमारी लौकिक माताजी बहुत लगन वाली पुरुषार्थी आत्मा थी, और वो गुप्त रीति से, उनका पियर था आगरा, और वो 3 बार साकार बाबा से जब अपने माँ बाप के पास आगरा आती थी 1-1.5 मास की छुट्टी लेके, तो वो मधुबन जरूर आती थी और हमको नहीं लेके आती, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं तो बाप तो छुट्टी देते नहीं थे। तो साकार बाबा से 3 बार मिली, तो उस समय तो पोस्ट कार्ड और अंतरदेशी लिपापत 15 पैसे का चलता था। तो माताजी हमको लिखती थी कि मैं मधुबन जा रही हूँ, और मैं उनको रिटर्न में जवाब लिखती थी कि आप नहीं जाओ, जब कलकत्ता आएंगे तो वापस पिताजी बाप गुस्सा करेगा। पर उनका लगन, उनका पुरुषार्थ हम देखते थे, पर यह नहीं इतना जानते थे कि उनकी इतनी बाबा से प्यार है, इतना बाबा की मुरली से प्यार है और दादियों से प्यार है, ये इतना हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चे थे। तो ऐसे करके माताजी की अपनी लगन, अपना पुरुषार्थ, और हम माताजी के साथ आते थे, पर सवेरे क्लास में नहीं आते थे, शाम को स्कूल से छुट्टी होती थी तब सेंटर पर आते थे। और उस समय हमारी परदादी चाय पीती थी और टोली खाती, तो हमको कुछ ना कुछ अपनी प्लेट से एक टोली बिस्किट या कुछ भी खिला देती थी। अब भगवान को किसको कैसे चाबी घुमानी है, किसको अपना बनाना, वो तो उसके हाथ में ही है ना। तो हम तो कहते हम तो टोली खा के ही आ गए, बाकी कोई समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। पर हाँ, ज्ञान नहीं समझ में आता, पर बाबा से योग बहुत अच्छा लगता था, बाबा से बातें करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बंधन थे, बंधन के कारण बाबा से लगन बहुत जुड़ी रहती थी। घर में भी योग करते थे, सेंटर पर भी शाम को जाते थे, तो योग करना कभी छोड़ते नहीं थे, योग करके आने चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा अंदर में आत्मबल आत्मविश्वास शुरू से रहा। तो ऐसे करके माता जी के अपने बंधन थे, हमारे अपने बंधन थे। अभी एक माता जी की बात सुना देती इसी के साथ में, कि इतनी लगन होने के बाद माता जी बाबा की मुरली को कोयले की पेटी में छिपा के रखती थी, है? क्योंकि यदि अलमारी में कभी कपड़ों के बीच में मुरली या ज्ञानमृत मिल गई तो लौकिक बाप तुरंत उसको फाड़ के चूल्हे में डाल देते थे। तो माता जी कोयले की पेटी में प्लास्टिक की थैली में लपेट के मुरली को रखती थी, और वो 5 बार मुरली पढ़ना, अमृत बेले सवेरे 2:30 बजे उठना, हमको भी इशारे से उठा देती थी, क्योंकि भले उस समय घर बड़े होते थे, पलंग भी होते, पर कलकत्ते में तो जमीन में मोटे मोटे गद्दे डाल के लोग सोते थे जमीन में। तो माता जी भी योग करती थी, हमको भी उठा देती, हम भी योग करते। तो नियम था 2:30 से 4 बजे तक योग करना, और 4 बजे फिर नल में पानी आता था, माता जी स्नान करती थी, और फिर उसके बाद 5 से 5:30 मुरली पढ़ के फिर 5:30 फिर सेंटर जाती थी मुरली सुनने के लिए। हम फिर तो थोड़ा योग किया फिर सो गए, क्योंकि हमको तो स्कूल जाना है। और माता जी मुरली सुन के 7:30-8 बजे आती थी, जब तक थोड़ा काम कर देते थे माता जी को, थोड़ी मदद, चूल्हा जला के रख दिया, क्योंकि उस समय गैस नहीं थी, चूल्हे पर खाना बनता, तो थोड़ा काम उनके लिए सब्जी काट के मदद, क्योंकि हमको भी स्कूल जाना है और बाप को भी दुकान जाना है। 9:45 के अंदर जाते थे और रात्रि 9 बजे आते थे। तो इसलिए पिताजी को मालूम पड़ता है ये ज्ञान में चलती है, पर हमारा इतना मालूम नहीं था, क्योंकि हम शाम को क्लास में आते थे मुरली सुनने और योग करने के लिए। और उसके बाद माताजी सेंटर पर आके काम अपना करके, माताएं जैसे करती हैं, दिन में 2 बजे काम पूरा करके फिर उनको मुरली पढ़ना, और उसके बाद में फिर 3:30 सेंटर पर जाती थी। माताओं को आदत होती है सेंटर पर सेवा करने की, टोली बनाने की, और अनाज साफ को समय तो अनाज साफ करते थे, गेहूं चावल, और फिर ऐसे करके कोई को मुरली सुनाना, किसको कोर्स कराना भी करती थी। फिर हम स्कूल से जब आते थे सेंटर से माता जी के साथ, फिर हमको ले करके वापस घर आती थी। तो उस समय भी हम घर में थोड़ा काम माता जी कर लेती थी, सब्जी वगैरह बनाए, रोटी तो बाप आते थे तभी बनाती थी, एक साथ सबको खिलाती। तो उस समय भी घर में योग करना फिर मुरली पढ़ती थी, और उसके बाद रात्रि में भी माताजी मुरली पढ़ के सोना, 5 बार हो गई ना मुरली। अब रात को क्या होता था कि कभी 10:15-10:30 बजा देती माताजी। अब मेरे को तो मालूम है मुरली पढ़ रही होगी, अब लौकिक बाप हमको कहते कि देखो तुम्हारी माँ का काम हुआ नहीं है क्या, पर मेरे को तो मालूम है वो बर्तन माँज क्या वो मुरली पड़ रही है। तो अपने सामने कटोरी गिलास चम्मच रख देती थी और बीच बीच में बजाती रहती, तो लौकिक बाप समझ रहा कि अभी तक बर्तन माँज रही है। देखो माताएं कितनी युक्तिबाज है, हमको इस चीज का ज्ञान नहीं, पर पीछे समझ में आया। इसलिए साकार बाबा ने उनका लौकिक नाम गुलाब था और बाबा ने उनका नाम रखा ज्ञान गुलाब, समझा? तो इसमें एक और बात, वो पीछे टाइम होगा सुनाऊंगी। तो एक बार बाबा ने वो पत्र हम लोग बहुत लिखते थे साकार बाबा को, अपनी दिनचर्या, अपना दिल का हाल चाल, कुछ भी परिस्थिति होती तो ब्रह्मा बाबा को मधुबन में पत्र लिखते थे और बाबा का पत्र का जवाब 15-20 दिन के अंदर वापस आ जाता था। तो एक बार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने पत्र लिखा मुलोकी माता जी के लिए कि बच्ची एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। अब 17 साल हो गए हैं बंधन में चलते हुए माता जी को हमारे को, हम लोग यही आस लगाए रहते कौन सा दिन आएगा है? मैं तो शॉर्ट में सुनाती हूँ क्योंकि 60-65 साल का इतिहास तो थोड़े में नहीं पूरा होगा, पर माता जी का अपना हिसाब किताब था, पर बाबा ने उनको वरदान दिया। अब बाबा का ये वरदान कैसे होगा वो पीछे फिर सुनाती, पहले बाबा की बात सुनाऊं। तो ऐसे करके बाबा को पत्र लिखते थे और कुछ ना कुछ याद सौगात भेजते थे हम ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि मेरे को बचपन से ये था कि माता जी तो मधुबन जब जाती है ना कुछ करके आती है। पहले के जमाने में माताओं के पास तो सोना चांदी होता था तो कुछ ना कुछ करके आती, पर मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो एक बार मैंने बाबा को, साकार बाबा को गुल्लक भंडारी मिट्टी की होती है ना वो भेजी भर के, उसमें 100-150 रुपया चिल्लड़ आएगी और कितनी आएगी, तो बाबा को भेजी। पर बाबा ने फिर रिटर्न में एक लकड़ी की भंडारी हमको भेजी, क्योंकि उसको तोड़ते हैं तो पूरी हो जाती है, तो बाबा ने बनवा के भेजी होगी लकड़ी की भंडारी। तो भंडारी बाबा ने भेजी तो लौकिक बाप जब रोज दुकान जाते थे ना तो जितना उनके जेब में चिल्लड़ होती थी ना वो सब मेरे हाथ में देके जाते थे और 10-15 पैसा 25 पैसा अपने पास रखते थे, क्योंकि कलकत्ते में ट्राम बस भाड़ा 5 पैसा 10 पैसा और 15 पैसा। इतने ही किराया होता था। तो जब भर जाती थी तो गुल्लक, तो मैं साकार बाबा को, कोई भी दीदी दादियां जाती थी ना तो वो गुल्लक बाबा को भेजती थी। तो बाबा ने हमको रिटर्न में 3 बार फ्राक भेजी साकार बाबा ने, क्योंकि 14-15-16 साल की उम्र तक तो फ्राक पहनी है। लास्ट में बाबा ने 68 में एक सूट भेजा हमको। तो ऐसे करके साकार बाबा की बहुत पालना ली। और एक बार क्या हुआ कि लौकिक बाप का बिजनेस था फैंसी सामान का, तो घर में माल सप्लाई होता था, तैयार होता दुकान में जाता रेडियो के, तो उस समय विदेश का माल आता था तो कुछ अच्छे सुंदर सुंदर चाबी कड़ा थे, तो चाबी कड़ा थे उसमें से मैंने 2 कड़ा निकाल लिया बाबा को मधुबन में भेजना है। अब ऐसे अंदर में सोच रही हूँ कि बाबा ऐसे तो चोरी करना मना है, पर मैं क्या करूँ मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो 2 उसमें से निकाल लिया बाबा को भेज दिया। तो बाबा ने एक बार हमको पत्र लिखा कि बच्ची ये है कौन है जो बाबा को इतना प्यार से पत्र भी लिखती है, कुछ ना कुछ सौगात भेजती है, तो बच्ची तुम अपना स्कूल ड्रेस में एक फोटो भेजो। अब हम लोग को तो इतना भी उस समय कोई अक्कल नहीं था कि फोटो कैसे खींचना, किससे खिंचवाना है। तो लौकिक बड़े भाई वो भी एंटी थे, तो एक दिन मैंने उनको बोला कि हमारा स्कूल में फोटो मंगवाया है तो आप मेरा एक फोटो खींच दो। तो स्कूल ड्रेस में मैंने, जब मैं 13-14 साल की थी, 14 की हुई, तो मेरे को फोटो स्कूल में देना है, तो बड़े भाई ने खींचा और वो फोटो मैंने साकार बाबा को भेजा। तब साकार बाबा ने मेरे को कहा उसके साथ एक प्रदर्शनी लगी थी, तो उस प्रदर्शनी में भी सेवा किया। तो उस समय बाबा ने एक पत्र लिखा कि जो बच्चे जासी पार्टी समझाएंगे ना, बाबा उसको इनाम देगा। तो मेरे को बहुत अंदर से लगन हो गई कि जासी पार्टी समझाऊंगी, बाबा कोई अच्छी बड़ी इनाम मेरे को देगा, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने उस समय पत्र में लिखा कि ये बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है, 1967 की बात है। पर हमको इतना मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ये कोई भगवान का वरदान है या आशीर्वाद है, कुछ भी जान इनों से अंत समय इतना ज्ञान स्पष्ट नहीं था। बाबा के पत्र को संभाल के रख दिया। पर ऐसे करते हुए साल बीतते गए, जब हम 18-19 साल के होने लगे तो लौकिक बाप कहीं किसी परिवार में शादी में ले जाते थे तो मेरे को एकदम पसंद नहीं आता था, शोरगुल आवाज अच्छा नहीं लगता था, और कपड़ा भी सिंपल पहनते, एकदम हल्का लाइट कलर का ढीला डाला। तो उससे बाप को समझ में कुछ आने लगा कि ये पहले जब छोटी थी तो दुकान से बक्कल वगैरह क्लिप कांटे मंगवाती थी, अभी तो कुछ करती नहीं है। तो उनको थोड़ा संशय हुआ और उनको अंदर में लगा कि जरूर इसको अपनी माँ का थोड़ा संग लगा है। तो उसके बाद फिर बंधन और आने लगे, माँ का संग का रंग लगा। तो उसके बाद तो 2 साल फिर और युद्ध चले। पर युद्ध चलने के बाद तो बाबा कहते हैं ना, सत्य की विजय होती है ना, है? तो बाप ने फिर थोड़ी तैयारी किया दुनिया में भेजने की। तो मैंने कहा कि यदि आप दुनिया में हमको भेजेंगे तो मैं दूसरे दिन भाग के चली जाऊंगी। और परिवार में 5 भाइयों में हम लोग कन्याएं सिर्फ 4-5 थी, बेटे ज्यादा थे, बेटियां कम थी। और हमारे से परिवार में सबका बहुत, दादी का, नानी का, ननिहाल तो आगरा था, तो सबका प्यार था। तो बाप को थोड़ा अंदर से लगा कि यदि इसकी मैं जबरदस्ती शादी कर भी दूंगा तो ये भाग के चली जाएगी तो और ही मेरी नाक कट जाएगी, और ही बदनामी हो जाएगी। ऐसे करके उन्होंने बहुत मन को मजबूत किया और बाबा के घर में समर्पण किया। 1978 में, 1973 फोर्थ से सेंटर में रहना शुरू कर दिया था, पर लिपके छिपके, क्योंकि कभी कहीं सेंटर में रहे तो कभी कह देता 3 नंबर चाचा के घर रह गए, कभी 2 नंबर चाचा के घर रह गए, क्योंकि अकेली थी ना, तो थोड़ा कभी कभी और कोई बहन तो है नहीं, तो थोड़ा मन होता था थोड़ी साथ की बहनों से मिलने का। तो बाप समझते थे कि चलो जाती है कभी शनि रविवार छुट्टी के दिन में। तो एक बार तो चोरी पकड़ी गई कि लौकिक चाचा जी दुकान में आ गए और बोला कि रुको घर गई है ना तो उसको अब भेज देना। तो उन्होंने बोला घर पर तो नहीं दिखाई दिए, तो थोड़ा उनको डाउट भी आ, फिर पिताजी समझ गए कहीं इधर उधर होगी, नहीं ध्यान दिया होगा। ऐसे करके 2-3 बार किया तो एक बार तो चोरी पकड़ी जाएगी है, तो बाप को मालूम तो थोड़ा पड़ा। पर हमने देखा कि उस समय का पुरुषार्थ और उस समय का योग बल इतना बाबा की मदद करता था, है? बाबा भी हमको मदद करता था, तो इसलिए बाबा ने अपना बना लिया। पर इसके साथ फिर बाबा की बात सुनाती हूँ, लौकिक माता जी की। जब समर्पण कर दिया तो लौकिक माता जी के साथ एक दिन सेंटर पर ब्रह्मा भोजन था, तो लौकिक पिताजी माता जी के साथ आए और सेंटर से भोजन करके जा रहे थे तो माता जी बस में गिर पड़ी और माता जी का हाथ और पांव का फ्रैक्चर हो गया। अब माता जी तो 5 बार मुरली पढ़ने वाली, मुरली के बगैर तो वो रहेगी नहीं, जी नहीं सकेगी। तो लौकिक बाप ने हमको कहा कि वो तुम्हारी माँ क्या पढ़ती रहती कागज पन्ना, तुम उसको ला के दियो। तो मैंने बोला मैं तो सेंटर पर रहती हूँ 25 किलोमीटर, मैं तो नहीं आऊंगी, मैं तो संडे संडे आऊंगी और आप नजदीक के सेंटर से लाके दो। तो ऐसे करके माताजी 3 मास हॉस्पिटल में, क्योंकि हाथ और पांव दोनों का फ्रैक्चर। तो एक बार मैं ऐसी अचानक संडे के दिन गई और माताजी लेटी हुई थी। देखो बाबा की बात कैसे प्रत्यक्ष होती है। तो देखती हूँ कि माताजी लेटी हुई है, लौकिक पिताजी माताजी को मुरली पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि लौकिक बाप उस समय के बीकॉम पढ़े हुए थे और अपना बिजनेस हिंदुस्तान पाकिस्तान के पहले से कलकत्ते में था। तो मैंने ये देखा तो मेरे को बहुत अंदर में लगा कि देखो ये बाबा की कमाल। सन 80 की बात है, 980 की बात है, उस समय जो बाप, क्योंकि कभी कभी आते थे, पर बाबा ने साकार, बाबा ने वरदान दिया तुम्हारा पति तुम्हारे चरणों में पड़ेगा। तो वास्तव में बात क्या हो गई, सत्य हुई ना, सत्य की जय होती है, विजय होती है। तो इससे क्या होता, लौकिक बाप को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता था कि ज्ञान कुछ सत्य है, कुछ अच्छाई है, क्योंकि ज्ञान तो कभी एक शब्द का भी नहीं सुना उन्होंने। माना इतने एंटी, इतने क्रोधी थे कि उनका हमारे पूरे परिवार में सब पढ़े भी वही थे और बिजनेस वाले भी थे, तो पूरा परिवार लौकिक, दादी उनकी माँ भी उनसे डरती थी ना, बोला उसके आगे नहीं जाऊंगी मैं। पर जब देखते थे कि सचमुच में ये भी उस लाइन में जा रही है, तो थोड़ा उनको समझ में आता था कि कुछ ज्ञान की गहराई है। फिर अचानक जब लौकिक माताजी ने 1983 में शरीर छोड़ दिया, तो लौकिक बाप तो ज्ञान का भी नहीं जानते हैं और मेरे को 2-4 मास के बाद कहते हैं कि आप, मेरे को दीदी को बोला आप मेरे को एक बार माउंट आबू ले चलो। तो मैंने तो बोला इन्होंने तो कभी कोर्स भी नहीं किया, ज्ञान भी नहीं, इनको कैसे ले जाएंगे। पर हमारी बड़ी दीदी ने बोला कोई बात नहीं, ले जाएंगे, वहाँ कोर्स करा देंगे। मधुबन में आए, कोर्स कराया, कोर्स करने के बाद तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर बड़ी दादी से मिलाया तो बड़ी दादी ने बोला कोर्स करने के बाद में फोर्स आ गया है, प्रकाशमणि दादी ने पूछा, बोला हाँ। तो ऐसे करके देखो कैसे आत्मा परिवर्तन होती है। मुख से कभी सुना नहीं। अब इसी के साथ एक बात और सुनाती हूँ, क्योंकि आप सभी बाबा के इस बेहद के घर में, पांडव भवन बाबा का तीर्थ स्थल है, 4 स्तंभ कहते हैं ना, 4 स्थान है, पर बाबा के इस स्थान का भी बड़ा भारी महत्व है। हमारी ऐसे ही, क्योंकि बड़े बाप भी एंटी तो भाई बड़े भी एंटी थे। तो क्या हुआ, मेरा एक 1997 में एक ऑपरेशन हुआ था और थोड़ा कैंसर का डाउट था, तो अशोक मेहता ने किया। तो बड़े भाई भी बड़े गुस्से वाले थे, तो बोला मैं मधुबन आबू नहीं जाऊंगा और ये लोग ना मारने के लिए लेके जा रहे हैं, बॉम्बे कलकत्ता छोड़ के, आबू तो गांव है, 97 तो तब तो अपनी ग्लोबल बनी थी, तो बोला गांव में ले जा रहे मारने के लिए। बहुत गुस्सा किया। तो लौकिक भाई, भाभी थोड़ी समझदार है, तो उन्होंने उसको समझाया भाई को कि देखो अभी आपकी तो भले बहन है पर वो जिस संसार से जुड़ी है उनके जो बड़े बोले वही करेंगी ना, आपके हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरा आबू में ऑपरेशन ग्लोबल में हुआ, तो भाई तो गुस्से में पहले ही था, तो उसकी बेटी की 6 महीने पहले शादी हुई, तो उसने भाई को बोला अपने बाप को कि आपको आबू जाना चाहिए आपकी बहन से मिलने के लिए। भाई बोला मेरे को नहीं जाना है, तो उसने फोर्स किया, तो फिर आया कलकत्ते से 1-1.5 दिन के लिए। तो वो मैं तो हॉस्पिटल से फिर जब निकल के आऊँ तब थोड़ा मिली, एक दिन मिली, तो वो सिर्फ यहाँ थल्ला है ना जो भाई लोग बैठे रहते हैं ना पांडव भवन के इधर आंगन में थल्ले पर, भाई लोग वो 1.5 दिन रहा, 1.5 दिन वो थल्ले पर ही बैठा रहा, भोजन किया पर थल्ले पर ही बैठा रहा। अब उसको क्या है मालूम नहीं, देखो बाबा का चमत्कार,
अब परिवार में सबको मालूम, क्योंकि पांचों भाइयों में सबसे बड़े थे, अब सबको ये मालूम पड़ गया कि भैया अभी गए ना, अभी गुस्सा करेंगे, देखो आके क्या बोलेंगे। सब लोग थोड़े डरे हुए थे। वो थल्ले पर सिर्फ बैठा डेढ़ दिन, वो उसको इतना अच्छा लगा। जब वापस कलकत्ता गया तो सब भाइयों ने, छोटे चाचाओं के बच्चों ने पूछा, भैया क्या था वहां पर आबू में? बोलता है, अरे वहां तो इतनी शांति लगी हुई है, वहां तो चिड़िए की आवाज, में तो एक ही जगह थल्ले पर बैठा इतना ही अनुभव किया। तो देखो अभी ज्ञान कुछ सुना नहीं है, सिर्फ बाबा के इस स्थान का, मधुबन का है, बाबा के घर का कितना बड़ा महत्व है। क्योंकि इस धरनी पर बाबा मम्मा सभी दादियों के चरण पड़े हैं, है ना। पांडव भवन का महत्व यही है ना, कि बाबा मम्मा सभी दादियों के, दादाओं के चरण पड़े, सब रहे हैं। तो उसके बाद तो वो आत्मा एकदम चेंज हो गई। फिर तो साल में दो बार भी आई तो तीन बार भी आई, पर वो यहाँ जब आता था तो बाबा के कमरे में बैठना और घूमना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो कहने का मतलब है कि हमारे वाइब्रेशन, हमारे सकाश, जो बाबा वर्तमान समय हम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ के लिए कहते कि बच्चे वाइब्रेशन बनाओ, अपने सेंटर का भी वाइब्रेशन बनाओ, आपके घर का भी वाइब्रेशन बनाओ, सेंटर का नहीं सुना माता है, घर का भी वाइब्रेशन बनाना है। क्योंकि कोई भी आपके घर में आए तो अनुभव करे कि वास्तव में आपका घर स्वर्ग है, वो शांति की अनुभूति, सुख की अनुभूति करके जाए। अब बात याद आती है तो ऐसे लौकिक में चाचियां तीन थी हैं, और भी थी, पर जब लौकिक में चाचियां घर कल से गला थोड़ा ऊपर नीचे करने लगा चाचियां जब घर में आती थी ना, हमारे घर में कमरे में, तो सिर्फ पांच मिनट बैठती थी, पांच मिनट माता जी के पांव छीरती थी जिठानी है, और बस कुछ राजी खुशी ठीक है चली जाती थी। अब बड़ी ताई जी के घर में तीन तीन चार चार घंटा बैठती थी, तो मेरे को अंदर में लगता है उनके घर में इतना देर बैठती है और हमारे घर में पांच मिनट बैठ के चली जाती है। पर उनको उस समय डर था कि कहीं इनको हमको ज्ञान का जादू नहीं लग जाए, इतने लोगों को भय था। तो मैं अंदर माँ को नहीं कहती, पर अंदर ये बात समझती थी कि उनके पांच घंटा शाम को छह सात आठ बजे तक जाती हैं और हमारे घर में पांच मिनट कमरे में आती हैं। क्योंकि माताजी पिताजी का जो नेचर था बहुत शांत, और आलतू फालतू बातें कभी आपस में भी नहीं करते थे, और हम बच्चों के आगे तो कभी नहीं किया होगा, आपसी भी नहीं करते थे। क्योंकि 9 बजे रात को आते थे, सवेरे 10 बजे दुकान चले जाना, कहाँ टाइम होता। तो कहने का मतलब कि हम बाबा के बच्चों को, विशेष माताओं को भी, अपना जो बाबा कहते गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ धर्म है, तो हम सभी का घर का वातावरण भी इतना पावरफुल होना चाहिए जो हमारे सामने कैसी भी आत्मा आए, फिजूल बातें, व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातें कभी नहीं करे। नहीं, ऐसा हम सभी को अपना विशेष पुरुषार्थ करने के लिए बाबा हम सभी को चांस देते ना, इशारा देते हैं। अब थोड़ी दादियों की बात सुनाती हूँ, क्योंकि बचपन से जब ज्ञान में आए तब तो 6-7 साल की उम्र थी, और मेरा बचपन तो शुरू से दादियों के साथ, और जिसमें खास परदादी के साथ, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी के साथ, उनके साथ बीता। घर में रहते थे पर जो समय मिलता था जब भी, तो दादी के साथ सीखने को मिलता था। तो दादी के साथ तो हमने पांव की एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक भी उनके साथ हमें सीखने को मिला। जो बाबा हम बच्चों को, हम ब्राह्मणों को इशारा देते हैं कि आप बच्चों के बोलना कैसे है, चलना कैसे है, सीखना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ऐसे ना, खाना कैसे खाना है, ये सब दैवी गुणों में आता है। तभी तो हम 36 कलाएं 16 कलाएं वाले बन पाएंगे ना, तो दादी की बात सुनाती हूँ, एड़ी की पहले बात सुनाती हूँ कि एक बार ऐसे ही कलकत्ते की बात है 40-45 साल पहले की, क्योंकि 50-51 साल कलकत्ते में रही, अब 21 साल से आबूम नीचे रहती हूँ जासी। तो ऐसे ही मतलब वो आ रहे थे और 50 साल पहले हम कहीं से सेंटर से भोग लगा के आ रहे थे, तो परदादी थोड़ा आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे पीछे दौड़ के सीढ़ी चढ़ के आ रही, पर एक कुमारी थी बीच में जिस सेंटर पर थे, इधर एक छोटी छत थी, उधर रहने का किचन वगैरह कमरे थे, तो वो थोड़ा दौड़ के जा रही थी, लकड़ी का स्थान था, तो लकड़ी के स्थान पर जब जोर से चलेंगे तो क्या होगा, ठक ठक आवाज होगा ना। तो दादी सीढ़ी चढ़ के आके बैठी और मेरे को कहा कि जो कन्या भी दौड़ के जा रही थी ना उसको बुला के लाओ। मैं उसको बुला के आई कि बोला कहा कि तुमको बड़ी दीदी बुला रही है। वो आके बैठी, दीदी ने उसको कहा एक बात, देखो दादियां कैसे प्यार से समझाती, डांट कभी नहीं लगा, प्यार से। तो दादी ने उसको कहा कन्या को कि तुमको सत्युग में चलना है। बोला हाँ दीदी चलना है। तो बोला सत्युग की चाल चल के दिखाओ। तब वो दादी उस समय 70-75 साल की उम्र थी, अब वो दादी के आगे थोड़ा तो लज्जा आएगी ना, तो थोड़ा चले नहीं। फिर दादी ने बोला नहीं थोड़ा दो कदम चल के दिखा। तो वो दो कदम चली तो दादी ने कहा कि अच्छा ये बताओ ये चाल अच्छी है या इसके पहले जो चाल चल के गई वो अच्छी है। तो क्या बोलेगी वही जो देवता ही चाल चली वो अच्छी है ना। तो दादी ने उसको प्यार से कहा कि देखो धरती हमारी माता है और जिस धरती पर हम बैठे हैं ना यदि हम जोर जोर से चलेंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा है? तो कभी भी किसी को प्रकृति को भी दुख नहीं देना है और हमको देवता ही चाल चलनी है, सत्युग में जाना है तो संस्कार तो यहां से धारण करने पड़ेंगे ना, गुण तो यहां से धारण करने पड़ेंगे ना। तो ऐसे करके दादी ने उसको कहा प्यार से, सिंधी में कहावत कही, तुम दानर घोड़ा हो क्या, जो बेलगाम घोड़ा होता है ना बेगर रस्सी छोड़ दो तो क्या होगा, वो दौड़ लगाएगा। तो ऐसे करके दादियां माना युक्ति युक्त समझाती थी, ना डांट लगाई ना आग दिखाया, उसको युक्त युक्त क्या कर दिया, समझाने मिल गई। अच्छा अभी सिर के बाल की बातें तो बहुत है। एक बार ऐसे हम कहीं से जा रहे थे तो कहीं किसी बहन को जाना था, तो दादी ने बोला चलो मेरे साथ जल्दी कहीं जाना सेवा पर। तो बहन ने क्या किया, जल्दी सीधे कंघी किसी की उठा के बालों में लगा ली और कंघी उसने उठा के कहां से कहां डाल दी। अब वो जो बहन शाम को तैयार होगी तो उसको तो कंघी चाहिए ना, तो उसने कंघी अपनी ढूंढी, वो मिली नहीं। तो रात को हम लोग की कचहरी होती थी रोज 9-10, कभी 11 भी बज जाता, 12 भी बज जाता, किसी ने सारा दिन में क्या भूल किया क्या अच्छा किया, दादी के आगे बात आती थी। तो उस बहन ने कहा दीदी आज मेरी कंघी ना मिली नहीं, किसी ने उठा ली, कहां गुम हो गई मालूम नहीं। तो हम सभी से पूछा तो एक बहन ने हाथ खड़ा किया कि दीदी मैंने कंघी उठाई सिर में लगाई कंघी किया। तो दीदी ने उसको प्यार से समझाया, देखो कितना ज्ञान का गहरा राज है। बोला कि देखो तुमने उसकी कंघी उठाई, पर जब वो बहन कंघी लगाती है उस समय उसके संकल्प किस प्रकार के थॉट होंगे, उनके मन के विचार क्या होंगे, और तुमने उसकी कंघी उठा के अपने सिर के में डाली कंघी की, तो उसके जो नेगेटिव कोई संकल्प होंगे मन के विचार होंगे वो किसके पास आए होंगे, तुम्हारे सिर में घुसे होंगे ना। अभी आप सोचो ये पढ़ाई कौन पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता ना। अब ऐसी छोटी छोटी बातों की गहराई ना कोई यूनिवर्सिटी में सुना सकता ना कोई स्कूल में, पर भगवान ने प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाया, दादियों को सिखाया। अब एक बात और परदादी की रबड़ की सुनाती हूँ। कलकत्ते में बाप का बिजनेस फैंसी सामान का था, तो राखी दिवाली पर ही घर जाते थे। तो घर जाते थे उस समय मैं समझती 1 किलो पैकेट थैली का दाम 10-15 रुपया होगा। तो घर से लाते थे क्रीम पाउडर कई चीजें, जब जाते साल में 2-3 बारी तो ले आते थे। तो रबड़ तो आपको मालूम है छोटी, कैलेंडर में भी लगाते, टोली के डिब्बे में भी लगाते हैं। तो दीदी का कमरा अंदर था और बीच में किचन और ऑफिस में जाती थी। तो परदादी 2-4 दिन से देख रही होगी ये रबड़ बहुत वेस्टेज कर रही है। तो आपने देखा कभी कभी रबड़ क्या होती, टूट करके टूटी होती पर साबुत होती है, कभी कभी ना गोल होके पड़ी होती है। तो परदादी निकल के आ रही और मैं सामने खड़ी थी, तो मेरे को बोला ये रबड़ उठाओ। अब मैंने मन में सोचा ये रबड़ का 1 पाई पैसा भी मूल्य नहीं है और दीदी कहती उठाओ। अब बड़ों ने बोला तो बात माननी पड़ेगी। रबड़ को उठाया तो रबड़ जब उठाई वो रबड़ निकली साबुत। तो दादी ने कहा कि देखो बाप के, तुम क्या समझती बाप के घर से लाती फ्री लेके आती है क्या? तो मेरे को कहा कि देखो देने वाले ने देकर अपना भाग्य बना लिया। हाँ, उसके पहले मेरे को बोला कि देखो तुम 1 रबड़ गवाएगी ना तुम्हारा 1 लाख का भाग्य कम हो जाएगा। अब 1 लाख का भाग्य कम होगा तो मेरे को चिंता हो गई और मेरा थोड़ी शकल छोटी हो गई है, थोड़ा मन रोने धोने जैसा हो गया। अब 18 घंटा इनके साथ रहती हूँ, अब भाग्य बनना हो तो मेरे को मालूम नहीं है। अब दीदी कहती 1 रबड़ गवाएगी तो भाग कम होगा। तो अब उनको खाना पीना खिला दिया, दादी दोनों दादियों को, संती दादी भी थी जो बाबा की बिस्कुसुर भाव की युगल, वो भी कलकत्ते में थी। तो दोनों को खिलाने के बाद थोड़ा शकल जो छोटी थी ना, तो परदादी ने मेरे को कहा कि तुम्हारी शकल छोटी क्यों हुई है? तो मैंने बोला कि मैं टोली का डिब्बा बनाऊंगी पर टोली के डिब्बे में रबड़ नहीं लगाऊंगी। तो बोला अच्छा ये बताओ तुम आस्तिक है कि नास्तिक है? तो मैंने कहा कि नास्तिक तो नहीं हूं तो आस्तिक। तो बोला तो क्या करेगी? तो मैंने कहा ठीक है टोली के डिब्बे में रबड़ लगाऊंगी। बड़ों के आगे तो मानना ही पड़ेगा ना। तब दादी ने कहा कि देखो देने वाला देकर अपना भाग्य बना लेता है और तुम बाबा के घर में रहकर यदि तुम वेस्टेज करेगी तो तुम्हारे खाते में प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या होगा भाइयों? माइनस होगा ना। तो हम लोग को तो इतना परदादियां माना सभी दादियां ऐसे करके, मैं तो अपने जीवन में 1 कदम आगे उनका चलता, उनके पीछे 1 कदम चलती थी और अमृत बेले बाबा को यही सुना देती थी, बाबा आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीते हैं। यदि कोई बहन गलती करती उसको शिक्षा मिलती थी ना तो मैं अंदर समझ जाती आज इसको शिक्षा मिली है ना, अभी मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ये ही परदादी की बात। अभी मैं जानकी दादी की बात सुनाती हूँ। दादियों के साथ तो बहुत पूरा ही जीवन बीता है। पांडव भवन की बात है, आज से 13-14 साल पहले की बात। परदादी थी उस समय, तो सदगुरुवार का दिन था तो सिर धुलाई किया था। तो ऐसे मेरा नेचर है बाल को एकदम गोल करके लपेट के रखना, पर फिर भी कैसे, तब उस समय सीढ़ी थी, स्टेज सीधा नहीं था, 3-2 सीढ़ियां थी, वो बाल उड़ के नीचे चला गया। इंद्रप्रस्थ के आगे हमारी गीता बहन जी है ना, वो कुछ ना कुछ सुखाती रहती है, और दादियां भी कुछ खाती थी ना, मूढ़ी मुरमरा मटरी कुछ भी, कुछ कना दाना गिरा ना तो कहती फेंको नहीं, डस्टबिन में नहीं डालो, बाहर डाल दो, चिड़िया का पेट भर जाएगा। उसके कहाँ चिड़िया आती थी। अब बाल जो उड़ गया तो इतने में जानकी दादी कहीं से विदेशियों का क्लास करा के आ रही थी। तो दादी ने मेरे को कहा कि रुक्मणी ये तुम्हारा बाल है। तो मैंने बोला दादी मेरा ही बाल होगा कि मैंने सिर धुलाई किया है। तो दादी ने कहा कि दादी ने मेरे को कहा कि देखो रुक्मणी तुम बाल नहीं उठाएगी ना तो चिड़िया का पांव बाल में उलझ जाएगा और उलझने के कारण वो चिड़िया उड़ नहीं सकेगी तो बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा। माताएं बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा, हमारे ऊपर जिसने फेंका उसके ऊपर नहीं, ऐसे होगा ना। आप सोचो कितनी गहराई की बात है। यदि बाल है उलझ के चिड़िया उड़ नहीं सकेगी तो उसका बोझ भी हमारे ऊपर जाएगा। तो जीवन में देखा कि दादी एक एक छोटी छोटी बात का इसी प्रकार हम देखते चाहे परदादी चाहे जानकी दादी को देखा, खड़ी नहीं हो सकती दादी जानकी 100+ थी और दादी खड़ी नहीं हो सकती। हम लोग कभी कभी हमको दादी कभी 3 बजे रात को 10 बजे कभी 12 बजे बुलाती थी कुछ ना कोई टोली या कोई काम से। तो 10 बजे एक दिन गुड नाइट करके निकल रहे दादी को बोला हमने आपके कमरे में हम छोड़ देते पकड़ के। दादी कहती नहीं मैं पकड़ के खड़ी हूँ तुम पहले लाइट पंखा बंद करो कमरे का हॉल का पीछे चलेंगे हमको हाथ पकड़ के छोड़ के आना। तो हम देखते थे कि जीवन में सचमुच में सभी दादियां A to Z सभी दादी यज्ञ को इतिहास को याद करो कि सभी दादियों का कितने बड़े उस समय खानदान के थे। और जब यज्ञ में आए तो एक एक पाई पाई का हिसाब रखा। आपने सुना हुआ जब बाबा ने पहली बार दादी जानकी को सेवा पर भेजा तो 25 पैसा दे के भेजा और 25 पैसे में बाबा ने कहा खाना भी और बचा के भी लेके आना। आप समझ सकते हैं कितनी दादियों ने सेवा की है। तो मैं तो हमेशा सामने अपने दादियों की चाहे गुलजार दादी हो चाहे प्रकाशमणि दादी हो चाहे बड़ी दीदी हो मनमोहनी दीदी की भी बहुत पालना ली है। उनकी मदर क्वीन मदर थी उनकी भी पालना ली है। सभी दादियों की बातें जीवन में मैं सामने रख के सदैव चलती हूँ और हमेशा बाबा को यही अर्जी डालती हूँ कि बाबा मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीते। तो हम तो देखते हैं कि बाबा का यज्ञ मधुवन चाहे नीचे है चाहे ऊपर है पर हमारी सभी दादियों के मेहनत से तप से तपस्या से उनकी त्याग वृत्ति से ही यज्ञ कहाँ पर पहुँचा है यहाँ तक पहुँचा है ना। लोग कोई नया जब का आता है ना हमारे पास भी कोई चाहे परिवार के चाहे ज्ञानी लोग देखते हैं ना नीचे शांतिवन में इतनी गाड़ियाँ हैं इतनी बिल्डिंग है तो लोगों की आंखें चार होती हैं पर उनको ये मालूम नहीं यज्ञ किसका है किसने रचा है। भगवान का रचा है ना। हम सभी ब्राह्मणों का और सभी दादियों की त्याग तपस्या का फल है और वो हम सभी फल खा रहे हैं। हमको तो याद है कि जब ओम शांति भवन बन रहा था और बनने के बाद तैयार हुआ एक ही एम्बेसडर गाड़ी थी और वही गाड़ी जाती थी प्रकाशमणि दादी को मनमोहनी दीदी को छोड़ने मनोहर दादी पर दादी को मनोहर दादी संतामणि दादी है सबको। फिर दादियां जो उतरने समय एक दूसरे का हाथ पकड़ के नीचे उतर के आती थी तब एक गाड़ी थी और आज तो पता नहीं कितनी 1000, 1200, 1500 तीनों चारों स्थान पर। तो देखो बाबा का यज्ञ हमारे बाबा ने और हमारी मम्मा ने हम सभी ने परसों मम्मा का दिन मनाया तो मम्मा तो बहुत शुरू से देखा बहुत त्यागी तपस्वी सादगी वाली मम्मा रही और हमारी दादियों का सभी का जीवन भी उसी प्रकार त्याग तपस्या से ही आगे बढ़ाया। तो अपने जीवन में तो मैं देखती हूँ कि जब हम दादियों की बातें सुनते हैं आप सभी लोगों में किसने किसने भाग्य विधाता आदि रतन है
और तीन चार मोटी मोटी किताबें अभी ना पढ़ी तो अभी याद नहीं है, किसने किसने पढ़ी हाथ खड़ा करो तो, बहुत थोड़े आधे। बाबा के यज्ञ की जो पुरानी दादियों की किताब है ना, आप सभी पढ़ो, परदादी की 3-1 किताब पढ़ो। आप एक बार उस बुक को हाथ में ले लेंगे ना, उसको जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। तो एक एक दादियों का इतिहास बहुत बड़ा है। हमको याद है कि जब परदादी यज्ञ में आई थी और अपनी बच्ची को 3 मास या 6 मास की छोड़ के आई, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन हुआ तो बॉम्बे में उनकी सास लेके गई, और बड़ी हो गई जब 7-8 साल की, 9 साल की, तो बॉम्बे में परदादी जब 90 बाबा ने भेजा, 64 तक रही बॉम्बे में, तो उनकी सास लड़की को लेके आई, पोती को, और एक हाथ में ज्वेलरी एक हाथ में पोती। तो उनकी सास ने कहा कि अभी तुम किसको स्वीकार करेगी, एक चीज लेनी होगी, चाहे लड़की को लो चाहे ज्वेलरी लो। परदादी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, न लड़की चाहिए न ज्वेलरी चाहिए। तो देखो कितनी बड़ी बात है, दादियों का त्याग कम ने इसलिए कहा कि दादियों की किताब पढ़ो तो आप लोग को समझ में यज्ञ क्या चीज है, हमारी दादियां क्या है, दादियों ने कैसे इस यज्ञ को चलाया बढ़ाया है। इसलिए हमारे सामने तो सदैव दादियां और बाबा मम्मा तो है ही, वैसे हम सभी प्रवृत्ति में रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, पर रहे ऐसे जैसे हम न्यारे होकर के रहे, नहीं ठीक है भाई। ओम शांति। 1 बज गया। एक बात और सुनाती, दादी की याद आती है, दादियों की 2006 की बात है। पर दादी की बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी की भी तबीयत ऊपर नीचे हो रही थी, वही डॉक्टर दादी को भी देखते थे, परदादी शांतमय सभी दादियों को उसने देखा। तो हम परदादी को लेकर के हॉस्पिटल गए तो 90+ थी परदादी। तो डॉक्टर देख मिनट अस्थमा दम्मा की शिकायत थी परदादी को, तो डॉक्टर देखता है कि 90 साल की उम्र, अभी 90 साल के बाद क्या करने का है। तो डॉक्टर देख के चला गया। दूसरे तीसरे दिन के बाद जब फिर आता है, रोज आता था, दूसरे तीसरे दिन पूछते हैं कि आपकी ये कौन लगती है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब जिन दादियों को आप देखते हो ना, वो हमारे यज्ञ के पिल्लर है। तो उसको ये बात मन में खटकती थी कि इनका कोई लगता नहीं है, है? हमारे साथ दूसरी बहन आशा भी थी, इनकी कोई रिश्तेदार भी नहीं, फिर भी लोग बहनें इतना प्यार से इनको चलाती हैं, देखती हैं, इतनी संभाल करती हैं। तो बात उस डॉक्टर को इतना दिल को लग गई, उसके बाद उसने डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट करना था वो पूरा किया और दिल जिगर से किया। तो जब मैंने कहा ना ये हमारे यज्ञ की पिल्लर है दादियां, आप ऐसे नहीं समझना, उस बात से वो डॉक्टर को समझ में आई ये कोई हस्तियां हैं। आज मैं रस्ते में भी बात कर रही थी कि ऐसे डॉक्टर की फीस काफी बड़ी है, पर हम जब कभी भी जाते, कभी भी अभी तक भी कोई फीस नहीं लेता है। तो देखो अज्ञानी व्यक्ति को भी इतनी दादियों से, सभी दादियों से इतना सम्मान था, इतना प्रेम था, जो हमने तो प्रैक्टिकल देखा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि दादी की बात याद आई तो उसमें मैंने कहा चलो सुनाती हूँ एक बात, ठीक है भाई। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने एक बार तो हमारी भट्टी में ही 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि सभी बाबा मम्मा के समय के हमें फैकल्टी के रूप में मिले हैं। तो दीदी जी आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। दीदी को देखते ही क्या अनुभव होता है कौन बताएगा, क्या एंजल, अच्छा दूसरा परदादी आ गए, और कोई बताएगा परदादी को किसने देखा है? हाथ ऊपर करे। तो भी काफी है दीदी। हाँ जी, हाँ देखा जी। तो इसीलिए जो बड़ों के पास अंदर भरा हुआ है वो हमें इस रूप में साक्षात्कार कराते हैं, बता के कि बुद्धि के विमान से हम उस तरफ चले जाते हैं और हम भी उस क्षणों का अनुभव करते हैं। यही बड़ों की विशेषता होती है, ठीक है ना? ओम शांति। तो चलो अभी ये भट्टी की पूर्णा होती नहीं है, क्या है? हाँ अभी तो शुरुआत है, क्योंकि हम कुछ नया रूप लेके अपना जा रहे हैं, नया बनकर जा रहे हैं, और बाबा के घर से इतनी जो पालना ली है उसका हमें रिटर्न देना है कि हमें भी ऐसे बड़ों की तरह हमें भी ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनना है, ठीक है ना? दीदी ने जो थल्ले की बात सुनाई ना भाई की, मैं भी दीदी जी छोटी थी, फ्रॉक पहनती थी, माँ के साथ आती थी, माँ सेवा में आती थी, इस थल्ले पे ही बैठती थी, छोटी, इतनी छोटी फ्रॉक पहन के, और ऐसे 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 पाव, क्योंकि पाव तो ऊंचा होता है थल्ले पे, वहां से उस तरफ से हिस्ट्री हॉल वाला जो है ना, वहां से चढ़ के आ जाती थी और सामने ही बैठती थी। और माताजी मेरी रोज शाम को मुझे 1 रुपया देती थी, फिर नकी लेक चली जाती थी, कहती थी मुझे आइसक्रीम खाना है। तो ऐसे देखो बचपन में इसी प्रांगण में खेल के हम बड़े होते हैं, तो आज देखो बाबा ने खाली खेलते खेलते भी हमें क्या बना दिया है ना, खेलते खेलते। तो बाकी सब भूल जाते लेकिन वो बचपन तो कभी भूलते नहीं है, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है, इस प्रांगण में बहुत कुछ है, जो एक बार आ भी गया ना, थोड़ा बैठ भी गया ना, उसका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। एक बात और भी सुनाओ, जब सुनाई तो, क्योंकि माताजी लेके आती थी हमें, फिर बाप दादा से मिलन होता था, उस समय माजुम की टोली बाप दादा के हाथ से ही मिलती थी और किसी से तो नहीं मिलती थी। समझ में नहीं आता था बाबा क्या है, बस देखते रहते थे बाबा को, बाबा के सामने हंसते रहते थे, ऐसे ऐसे करते रहते थे, और फिर बस नजर कहाँ होती थी, वो टोली पर टोली मिले और भागे। तो और माता है तो क्या करती है, एक टोली संभाल के रखती है कि घर जाके थोड़ी थोड़ी सबको लेंगे, लेकिन हम तो टोली पर ही नजर होती थी, है ना? तो काफी समय बाबा दृष्टि देते थे, कभी वरदान देते थे, लेकिन बस उसका कुछ महत्व नहीं, वो टोली चाहिए, और टोली लेके इतने खुश हो जाते थे, और माजुम की टोली तो कहीं मिलती नहीं थी, माजुम की टोली खा के इतने खुश हो जाते थे। दिल भी था, दिल खुश, मिठाई तो बाद में निकली, लेकिन माजुम की टोली बाप दादा के हाथ से मिलती थी। तो ऐसे सुंदर आज दीदी ने जब सारी बात बता रहे थे, हमें भी हमारे बचपन की लेकर के सारी बातें याद आ गई कि करते करते कैसे बाबा ने ब्रह्मा कुमारी बना दिया और बना के विश्व कल्याण में लगा दिया। तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलो 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। आप सबको मुबारक हो।